आस्था जल्दी अरमान के ठीक पीछे पीछे उस कमरे में गई। उसके कदम जैसे ही कमरे के अंदर पड़े, एक पल के लिए थमे गए। उसकी आंखों के सामने दादाजी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हुए थे। दादाजी को देखकर आस्था की आंखें नम हो गईं, पर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। अरमान ने आस्था की ये हरकत देखी, पर वो चुपचाप खड़ा रहा। दादाजी ने बड़े प्यार से आस्था को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर उसका हाथ थाम लिया। आस्था दादाजी की हालत देखकर बहुत भावुक हो रही थी, पर उसने जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोक लिया था। अरमान गुस्से से आस्था और दादाजी के हाथों को घूर रहा था। वो सोच रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा था तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया था, लेकिन इस लड़की का हाथ देखो कैसे पकड़े हुए हैं। कल आई हुई लड़की ने कुछ घंटों में ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरे दादाजी मेरे नहीं रहे। वो मुझसे ही बगावत करने पर उतर आए, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। ये सब सोचते हुए अरमान आस्था की ओर घूर रहा था। आस्था अब काफी घबरा गई थी, क्योंकि अरमान की नजरें सिर्फ उस पर ही थीं। आस्था को बहुत असहज लग रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दादाजी से बातें कर रही थी। आकाश आगे आया और आस्था से पूछा, भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है? आप तो बेहोश हो गई थी ना, अब आप ठीक है ना? आकाश के प्यार से पूछने पर अरमान गुस्से से आकाश की ओर घूरने लगा। वो सोचने लगा कि इन सबको क्या हो गया है, कैसे प्यार से बात कर रहे हैं, कितनी मीठी जुबान हो गई है, जैसे शहद खाकर आए हों। मेरे सामने तो इनकी जुबान तक नहीं खुलती। ध्रुव आकाश के पास आकर बोला, क्या तुम्हें अभी भी मेरे इलाज पर शक है? अरे ध्रुव द ग्रेट ने भाभी का इलाज किया है, भाभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ध्रुव मुस्कुरा दिया। आस्था भी मुस्कुराई। आकाश भैया, ध्रुव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वाकई में ध्रुव जी एक बेस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कितनी जल्दी ठीक कर दिया। ध्रुव जी, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्द से जल्द दादाजी को ठीक कर दीजिए, ताकि हम इन्हें जल्द से जल्द घर ले जाएं। ध्रुव बोला, अरे भाभी जी आप अब क्यों परेशान हो रही हैं, दादाजी का इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है, और डोंट वरी, एक से दो घंटे में उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद मैं दादाजी को खुद घर लेकर आऊँगा। तब तक आप अरमान भाई के साथ घर चली जाइए और जाकर आराम कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अस्पताल की रिपोर्ट्स आने में भी 2 से 3 घंटे लगेंगे, फॉर्मेलिटी वगैरह में देरी हो जाएगी। ध्रुव के कहने पर आस्था के होंठ फड़फड़ाने लगे। वो ध्रुव को कहना चाहती थी कि वो इस मॉन्स्टर के साथ अकेले नहीं जाना चाहती, वो यहीं अस्पताल में रुकना चाहती थी। वो मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। अरमान जो तिरछी नजरों से आस्था के रिएक्शन देख रहा था, तुरंत बोला, ध्रुव ठीक कह रहा है, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, दादाजी 2-3 घंटे में घर आ जाएंगे, तब तक तुम चलो, तुम भी आराम कर लो, अगर तुम बीमार रहोगी तो दादाजी का ख्याल कौन रखेगा। अरमान की बात सुनकर चारों का मुंह हैरत से खुला रह गया। दादाजी मुस्कुराकर ये सब देख रहे थे। वे यही चाहते थे कि अरमान अपनी पत्नी से अच्छी तरह से पेश आए, उससे प्यार से बात करे। उनके दिल को सुकून मिल चुका था। आहान तुरंत सुमित के पास गया और अपनी कोहनी मारकर बोला, है क्या, तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? सुमित आकाश को कोहनी मारकर बोला, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? आकाश ध्रुव को कोहनी मारकर बोला, है क्या, तुम्हारे कान भी ठीक काम कर रहे हैं, क्या तुमने भी वही सुना जो हमने सुना है? वे चारों बौखलाहट से एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। ध्रुव ने अरमान को कोहनी मार दी और बोला, है क्या, तुमने भी वही सुना जो हम लोगों ने सुना है? अरमान कन्फ्यूशन से ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव को तुरंत एहसास हुआ कि उसने फ्लो में अरमान को कोहनी मार दी थी। वे चारों इधर उधर देखने लगे, मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। अरमान ने आस्था की ओर देखकर कहा, अब क्या तुम यहीं खड़ी रहोगी, चलो चलना नहीं है। अरमान जल्दी आस्था के सामने से उसे वार्ड से बाहर निकल गया। आस्था निराश होकर कभी दादाजी को कभी उन चारों को देख रही थी। वो अपनी आंखों से उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई उसे उस मॉन्स्टर के साथ जाने से रोके, लेकिन वे चारों कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद भाभी की खूबसूरती ने अरमान को बदल दिया है, और इसीलिए अरमान अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहता है। वे सब यही सोच रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। देव आस्था के पास आया और बोला, मैडम सर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव और आकाश आगे आए और बोले, हाँ हाँ भाभी अब आप जाइए, हम आपको बस 3 घंटे बाद घर पर ही मिलेंगे। अगर आप दोनों को कुछ प्राइवेट बात करनी है तो आप हमें फोन या मैसेज कर देना, हम थोड़ा लेट भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वे चारों आस्था को छेड़ने लगे थे, लेकिन उस वक्त आस्था का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। वो अरमान के साथ अकेले रहने के ख्याल से डरने लगी थी, पर खुद को हिम्मत देती हुई देव के साथ जाने लगी। वो मन ही मन बोली जा रही थी, आस्था चल कुछ नहीं होगा, ये मॉन्स्टर तो तुझे तलाक देने का ही सोच रहा है, तो तू इस बारे में ज्यादा मत सोच, अगर ये ज्यादा तुझे कुछ कहेगा तो तू भी इसके बारे में दादाजी को बता देना। खुद से ही बातें करते हुए आस्था देव के पीछे पीछे जाने लगी। लाइक शेयर और रिव्यू प्लीज।